जन्मतां सकता कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः तदीयन्तस्ते हि अवद्राणि वेदनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 31 त्वमेव काल निमिषो जनानां
लाख लाख जीव हैं
लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में उनमें से हर एक में स्थित हैं, फिर भी वे अनेक में से एक हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युत्यम अनादि अनंत रूपम, उनके अनेक रूप हैं किंतु वे अद्वैत एक तथा अपरिवर्तित हैं। चूँकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे नित्य काल में भी स्थित हैं। जीवों को भगवान का भिन्नाश कहा जाता है, क्योंकि वे सभी जीवों के जीवन तथा आत्मा हैं और उनके हृदयों में अंतर्यामी के रूप में स्थित रहते हैं। जैसी कि अचिंत वेदाभेद दर्शन की स्थापना है, क्योंकि सारे जीव ईश्वर के अंश हैं, अतः वे गुणों में उनके समान होकर भी उनसे भिन्न होते हैं। परमात्मा समस्त जीवों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वह एक है और अव्यय है। यद्यपि विषयों तथा कार्यकलापों की अनेक किस्में हैं, फिर भी भगवान एक है। हरे कृष्ण। हे स्वामी, आप नित्य जागते रहते हैं, जो कुछ घटित होता है उसे देखते हैं। नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंगों तथा क्षण सेकंड मिनट और घंटे के समस्त जीवों की आयु घटाते हैं, फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं। एक ही साथ परमात्मा साक्षी अजन्मा सर्वव्यापी नियंता हैं, जो समस्त जीवों के जीवन के कारण हैं। हे स्वामी, आप नित्य जागते रहते हैं। भगवान नित्य जागते रहते हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? कोई प्रूफ, कोई ऐसा एपिसोड, कोई ऐसी बात जिससे आप पब्लिक में, समाज में उनको प्रूव कर सकें कि यस, भगवान जो है नित्य जागते रहते हैं, भगवान कभी सोते नहीं? साधारण भाषा में कहते हैं, देखो भगवान चतुर्मास्य में सो गए कि नहीं सो गए, चार महीने सोते हैं कि नहीं सोते? यहाँ किस संदर्भ में बात हो रही है, किस रेफरेंस में, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि भगवान नित्य जागते रहते हैं? क्या वो कंटेक्स्ट में कि जो योग निद्रा में जाते हैं चार महीने भगवान सोते हैं उसमें, या इसमें किस संदर्भ में बात हो रही है, या किस संदर्भ में कहा जा रहा है कि भगवान नित्य जागते रहते हैं? नहीं, साक्षी काल ठीक है, आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं ना? सोता कौन है? आप सो रहे हैं, सोता कौन है? कौन थका? आंखें लगातार जागते रहने से, अर्थात कार्य करते 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 थक के शिथिल हो गई और बंद हो गई, तो निद्रा आ गई, तो सो कौन रहा है? आप सो रहे हैं या आपकी आत्मा सो रही है? वो स्लीपिंग, कौन सो रहा है? शिथिल कौन हुआ है? आंखें शिथिल हुई है ना, निद्रा तभी आती है ना। भाई आंखें अब जो है खुल नहीं रही है, बड़ी नींद आ रही है, बहुत निद्रा आ रही है, मेरी आंखें अब खुल नहीं रही है, तो शिथिल हुआ है आंखें, शिथिल हुआ है शरीर, तो सो कौन रहा है? शरीर सो रहा है। अब प्रश्न यह है कि आपके हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान हैं, तो क्या आत्मा सो जाती है? क्या जो परमात्मा बैठे हृदय में वो भी सो जाते हैं? चलो ये सो रहा है, मेरा ड्यूटी खत्म हुई, मेरा काम खत्म हुआ, मैं भी थोड़ी नींद ले लेता हूं, मैं भी सो जाता हूं, ऐसा होता है क्या? आप कभी ना आजमा के देखना। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, आप रात में सो और ठान के सो कि मुझे सुबह 3 बजे उठना है, तो आपकी नींद अपने आप 3 बजे खुल जाती है, कौन खोलता है वो? शरीर तो जड़ है ना, शरीर तो जड़ है, तो निद्रा जो है आपकी निद्रा को, हाँ ये अलग बात है कि आप 3 बजे उठे, देखा अंधेरा है, फिर सो गए, पता लगे कि 9 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, जो भी है, परंतु अगर आपने रात में ये प्रण करके सोए हैं कि मुझे 3 बजे उठना है, तो 3 बजे नींद खुल जाएगी, 4 बजे उठना है तो 4 बजे खुल जाएगी, 5 बजे उठना है तो 5 बजे खुल जाएगी, तो वो आपको जगाता कौन है? वो एक सिवा कौन जगाता है आपको? तो जो आपके हृदय में बैठे परमात्मा हैं, जो कभी भी रेस्ट नहीं करते, सोते नहीं, डजंट स्लीप, ही वेक्स यू अप। अंदर से किसी प्रेरणा आती है, एक स्फुरना आती है और उसके अंतर्गत आप उठ जाते हो। तो भगवान जो है कभी भी सोते नहीं है, वो नित्य जागते रहते हैं। अब उसके लिए जो बात कही जा रही है कि एक बड़ा अच्छा इसमें सेंटेंस जो है श्लोक में आया है कि एक ही साथ परमात्मा साक्षी अजन्मा सर्वव्यापी नियंता है, जो समस्त जीवों के जीवन के कारण है। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, द्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाभियुक्तो देहिन अस्मिन् पुरुषः पर। तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। अब हम साक्षी शब्द पे आते हैं। एक साक्षी शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। साक्षी का अर्थ क्या होता है? विटनेस। क्या कार्य करता है विटनेस? विटनेस क्या कार्य करता है? गवाही देता है। गवाही देता है, विटनेस जो है साक्षी है। तो साक्षी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? साक्षी बनने के लिए आपका जो इंपॉर्टेंट कार्य है, जिसके द्वारा आप साक्षी बनते हैं, कि आपकी इंद्रियां जो हैं जागृत हैं। मींस आपकी आंखें बंद नहीं हुई। सामने चोर चोरी कर रहा है, आपने कहा मैं साक्षी हूं, तुम क्या कर रहे थे? जी मैं तो सो रहा था। वे सो रहे थे, तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम्हारी इंद्रियां सो रही थी, तब तुम कैसे साक्षी हो? तुमने कैसे देखा उसको? साक्षी होने के लिए क्या है कि आपके आंख कान जो है सब खुले होने चाहिए। मान लीजिए आपने कहा वहां बड़ी बदबू आ रही है, उसने कहा नहीं नहीं वहां तो बड़ी खुशबू थी, मैं साक्षी हूं, मैं वहां खड़ा था। आपकी नाक, आपकी इंद्रिय जो है उसने सबूत दिया कि वहां पे खुशबू नहीं है, वहां पर बदबू थी। मतलब आपकी इंद्रियां जो है वो जागृत होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, तभी आप साक्षी बन सकते हो। और अगर भगवान सो गए और आपके हृदय में बैठे हैं तो साक्षी कैसे होंगे? क्योंकि साक्षी है इसलिए सोते नहीं, डजंट स्लीप। साक्षी होने के लिए जागृत होना आवश्यक है। तो यहां जो है कहा जा रहा है कि परम स्वामी है, साक्षी है। तो साक्षी का अर्थ यह है कि भगवान कभी भी सोते नहीं, जो श्लोक के अंदर जो है इस एग्जाम्पल से परफेक्शन दी जा रही है कि भगवान कभी भी सोते नहीं। और अगला सेंटेंस क्या है? जो कुछ घटित हो रहा है उसे देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस कोने में जाके मैंने कुछ काम किया है तो कोई भी नहीं है। हाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है, भगवान भी नहीं, को मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मैं उनको देख नहीं पा रहा, इसलिए मैंने हेरा फेरी कर दी। परंतु यहां दो बातें उभर के आती। पहली बात कि भगवान सर्वव्यापक है कि नहीं? जब सर्वव्यापक हैं तो मैं अपने चरम चक्षुओं से उन्हें देख नहीं सकता, मैं अपने चमड़े की आंखों से भगवान को देख नहीं सकता, परंतु भगवान तो मेरे आसपास उपस्थित है। मैं कैसे मान जाऊं कि भगवान सर्वव्यापक नहीं है? सर्वभाग सर्वव्यापक है, तो मैं जो भी कार्य कर रहा हूं मैं नहीं समझ पा रहा कि भगवान देख रहे कि नहीं देख रहे, परंतु भगवान अपनी सर्वव्यापकता से मेरे आसपास विराजमान है, हर जगह उपस्थित है, तो मेरे प्रत्येक क्रियाकलाप को देख रहे। और दूसरी बात जो है, यहाँ रूपा जी जो है श्लोक के पर्पट में मेंशन करते हैं, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान आपके हृदय में विराजमान है, साक्षी है, मतलब सब चीजें देख रहे हैं, इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। और तो और क्या है, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो भी भगवान उससे अवगत है कि इसका मन क्या सोच रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार मिलेंगे ना फिर मजा चखाऊंगा आपको। कहा तो नहीं मैंने, अटर तो नहीं किया, मैं सोचूंगी भगवान मेरे पास बसते थे, बोलूंगा तो सुन लेंगे। मैं बोलता नहीं, मन ही मन में ऐसा विचार धारण कर रहा हूं, परंतु भगवान आपके हृदय में विराजमान है, वो आपके हृदय में अंतर्यामी कहलाते हैं। अंतर्यामी उनको सब ज्ञान है कि आपके मन में जो बातें आ रही हैं, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, उनसे भी वो अवगत है, वो जानते हैं। He knows everything। हम लोग भ्रांति में रहते हैं। जैसे कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, पहले भी दिया है फिर देता हूं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बड़े पक्के तौर से पट्टी पढ़ ली, घोटा लगा लिया, याद हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया। बिल्कुल, अब तो मैं भगवान को भोग लगा के ही भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूं, अब तो मैं बिना भोग लगाए ग्रहण ही नहीं करता। अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि 5-स्टार होटल में गए और वहां पे जो है भोजन ग्रहण करने की नौबत आई, तो सोचा हो वो भाई इतने बड़े होटल में आए हैं, इतना बड़ा बड़ा भारी भारी बैगी प्लेट है यहाँ पर, मैंने इतने पैसे भी आज दिए हैं कि दक्षिणा में मतलब गिफ्ट दिया, तो फिर देखा आसपास कोई तो नहीं है, नहीं कोई इस्कॉन डिपोटी नहीं है भाई, कोई देखेगा नहीं है, कोई नहीं है। और फिर उसके बाद चुपके से प्लेट में डाले और खा लिया। आप तो नहीं थे ना वहां पे, आप ही नहीं थे तो कौन देखने वाला, किसने देखा तो है नहीं। परंतु जो यहां बैठे हैं, यहां बैठे हुए हैं आपके हृदय में, वो तो देख रहे हैं, उनको तो आपके मन में विचार आते ही प्रकट है, साक्षी भैया ये सोच रहा है, ये सोच रहा है तो अब करेगा। तो भगवान जो साक्षी हैं, वो आपके साथ जो भी घटित हो रहा है, जो भी आप कार्यकलाप कर रहे हो, जो क्रियाकलाप चल रहा है, उन सब का ज्ञान भगवान को है, क्योंकि अंतर्यामी रूप से आपके हृदय में विराजमान हैं। He knows everything। तो अगर हम सोचें कि हम भगवान को धोखा दे सकते हैं, उन्हें तो पता नहीं लगेगा ना वो कौन से हैं, वो तो मंदिर में थे, वो तो अच्छा नहीं मंदिर में नहीं, कहा वहां भी तो मैंने खड़े होकर बोला था भगवान अपने दर्शन दीजिए, वहां मैंने उनको भगवान तो स्वीकार किया ही नहीं। मंदिर में ठाकुर जी के सामने खड़े होके मैंने प्रार्थना करी थी कि भगवान मैं अब देखिए 2 साल से मंदिर आ रहा हूँ, 3 साल से मंदिर आ रहा हूँ, आरती भी कर रहा हूँ, पूजा भी कर रहा हूँ, भोग भी लगा रहा हूँ, आप अपने दर्शन तो देते नहीं हो, मतलब जो आपका स्वरूप है मेरे सामने प्रकट होना चाहिए, इसको मैं भगवान नहीं मानता। तो भगवान ये बात भी आपके हृदय में विचार आते हैं तो इसको भी जानते हैं कि क्या सोच रहा है मेरे बारे में, What does he think about me? मेरे बारे में इसके मन में कैसे कैसे भाव हैं, कैसे कैसे विचार हैं, भगवान इस बात को भी समझते हैं। आगे कहा जा रहा है, नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंगों तथा क्षण सेकंड मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं, फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं। भगवान आपके हृदय में विराजमान है। कुछ लोग तो भगवान को हृदय में विराजमान मानते ही नहीं, और कुछ जो है भगवान को माया का बना हुआ मानते हैं। इसका क्या अर्थ है, मायावाद क्या है, व्हाट इज मायावाद? मायावाद और निराकारवाद ये 2 शब्द हैं। कई बार हम दोनों को एक ही जगह प्रयुक्त करते हैं, एक ही मीनिंग लेते हैं, परंतु इसका थोड़ा सा भेद है, दोनों में अंतर है। निराकार का मतलब है कि हम भगवान के आकार को स्वीकार नहीं करते, हम कहते हैं कि भगवान का आकार आकृति नहीं है, भगवान आकार रहित हैं, हम उनको साकार आकार सहित स्वीकार नहीं करते, ये निराकारवाद है। दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है मायावाद। मायावाद का अर्थ है कि जिस माया से हमारा शरीर बना है भौतिक प्रकृति, उसी भौतिक प्रकृति से भगवान का शरीर बनता है जब वो निराकार रूप में आते हैं, अर्थात मनुष्य का आकार लेते हैं। भगवान कृष्ण ने ब्रज के अंदर लीलाएं करी, द्वारका में राज्य किया, तो कैसा स्वरूप था उनका, देखने में कैसे थे, जाइंट थे, जाइंट पहाड़ की तरह बड़े थे क्या, 1000 फुट ऊंचे, 500 फुट चौड़े, 200 फुट मोटे, ऐसे थे क्या, बिल्कुल हम लोगों की तरह, और कैसे, षोडश 16 वर्षीय सुकुमार की तरह। तो मायावादी कहते हैं कि भगवान जो है जो निराकार, या निराकार की बात नहीं हो रही, निराकार मतलब नर का आकार लेते हैं, नर रूप अख्तियार करते हैं, तो उनका शरीर भी उसी भौतिक प्रकृति से बना है जिससे कि हमारा बना है, ये भाव आता है। इस भाव के आने से आपके मन में चेंज क्या आता है, सोचना, सोच कहां बदलती है जाके, कि जैसे हमारा शरीर जो है वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्षीण होता है, ऐसे ही भगवान का शरीर भी क्षीण होता है, क्योंकि वो भी उसी भौतिक प्रकृति से बने हैं। ये भ्रांति है, गलत फहमी है, ये गलत धारणा है, ये गलत सोच है, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, दे आर नॉट नॉलेजफुल। दूसरा, अगर भगवान का शरीर ऐसा ही बना होता जैसा कि हमारा बना है, और हम कहते हैं कि वो क्षीण हो रहा है, इसका मतलब है कि भगवान जो है वो शरीर के साथ लिप्त हो गए, सेम। जैसे हम कहते हैं कि कर्म तो शरीर करता है, पर भोगता कौन है, भोगता कौन है, शरीर भोग रहा है कि आत्मा भोग रही है, कौन भोग रहा है, हु इज एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ रिजल्ट्स। बहुत भ्रांति है। अगर आत्मा भोगता ना होती तो उसको विभिन्न योनियों में जाने की, अपने कर्मों का फल भोगने की आवश्यकता क्या थी। इसका मतलब यह है कि भोगता जो है वो आत्मा है, परंतु उस आत्मा को भोगने के लिए एक यंत्र चाहिए, एक हथियार चाहिए, औजार चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम बनता है शरीर। मैंने पूछा प्रभु जी से, आप यहां कैसे आए, बोले कार में। मैंने तो नहीं पूछा कार कैसे आई, मैं तो आप आए ना, आया कौन, आप, परंतु आपके आने के लिए, जो लाने के लिए यहां पर यंत्र था वो कार थी, आए आप, परंतु लाने के लिए यंत्र क्या था, कार थी। इसी तरह है, आपको विभिन्न योनियों में जाके भोक्ता बन के उस योनियों को भोगना है, उनके आपके जो कर्मों के फल हैं वो आपको वहां पर एंजॉय करने हैं, परंतु जब आत्मा भोग रही है तो इतनी सूक्ष्म है वो कि उसको उस भोगने का आनंद लेने के लिए, दुख उठाने के लिए, मिजरीज के लिए एक शरीर की आवश्यकता है, और भगवान आपके हृदय में विराजमान है। इसका मतलब है कि भगवान भी आपके साथ भोग रहे हैं, जब आत्मा भोग रही है आपके हृदय में विराजमान है, तो क्या भगवान भी भोग रहे हैं। तो यहां भगवान क्या कहते हैं कि मैं लिप्त, I'm no way concerned. मैं क्या हूं, उपद्रष्टा हूं, अनुमंता हूं, साक्षी हूं, बस। जो आप कर्म कर रहे हो, यही बात जो है श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद में उभर के आई है कि भगवान जो है आत्मा के साथ आपके हृदय में विराजमान है। हृदय को एक घोंसले की संज्ञा दी गई है, वृक्ष पर एक घोंसला है, घोंसले में दो प्राणी बैठे हुए हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा। आत्मा अपने कर्म के फलों को चख रहा है, उसको भोग रहा है, परंतु भगवान उसके साक्षी, उपद्रष्टा है, देख रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं। और अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, क्योंकि फ्रीडम है आपके पास, विल पावर, विल फ्रीडम ऑफ विल, तो आप उस कार्य को करेंगे, भगवान आपको अनुमति देते, यस गो एट, क्योंकि तेरा फैसला ही हो गया। तुमने ये अपने मन में सोच लिया है कि मुझे ये करना करना है तो करो। मेरी तरफ से मैंने आपको एक प्रेरणा दी है कि गलत हो सकता है, बुद्धि दी है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, गलत है या ठीक है, सत्य असत्य है, करनी है करनी है, कर्तव्य या कर्तव्य है, इसका फैसला करने के लिए मैंने आपको बुद्धि दिया है। तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, गो अहेड करो, इसको भोगना अल्टीमेटली तुम्हें। तो भगवान जो है कार्य करते हुए भी, कार्य हो रहा है आपके द्वारा, परंतु उससे लिप्त नहीं होते। यही बात जो है भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्ष। ये प्रकृति के तीन गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं, मैं लिप्त नहीं होता। सृष्टि मैंने रचनी है, मैंने जो है सब चारों विभागों की रचना करी है, सब कुछ मुझसे उद्भूत हो रहा है, उसको चलाने वाला मैं हूं, अंडर माई कंट्रोल, परंतु उस सब के बावजूद मैं उससे लिप्त नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट अफेक्टेड बाई दैट। मैं उसका कॉज हूं, करता हूं, क्या मैंने सब कुछ किया है फिर भी अकर्ता हूं। अकर्ता क्यों हूं कि मैं उससे लिप्त नहीं होता, आई एम नॉट एंटेंगल्ड विद इट, मैं इससे परे रहता हूं, एब्सोल्यूटली डिफरेंट। तो यहां चर्चा आ रही है कि भगवान प्रत्येक के हृदय में विराजमान है और माया के द्वारा आपको घुमाया जा रहा है। भगवान ने माया की रचना करी है, आप भोगना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, इस भौतिक संसार में आके आपने जो है एंजॉय करने की इच्छा जाहिर करी तो आपको यहाँ भेज दिया गया, परंतु सूक्ष्म आत्मा के साथ एंजॉय करने के लिए शरीर प्रदान किया गया। भगवान का आपसे अतः काउंटलेस प्रेम है कि पिता की तरह, जैसे पुत्र जो है पार्क में खेलने जाता है तो पिता साथ जाता है, या किसी को भेजता है, देखो भाई चोट ना लग जाए, खो ना जाए, गिर ना जाए, सड़क पे ना निकल जाए, खराब हो जाए, मतलब टू टेक केयर, पिता साथ जाता है बच्चे के, या माँ जाती है साथ, या सर्वेंट जाता है साथ, या भाई बहन किसी को साथ भेजते हैं बड़े को कि तुझे केयर लेनी है। यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरी संतान, मेरा पुत्र, मेरा भिन्न अंश मुझे छोड़कर इस भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए जा रहा है, तो पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य है उसकी केयर करो, उसका ध्यान रखूं। तो भगवान वो ध्यान रखने के लिए आपके हृदय में विराजमान होकर भौतिक संसार में आप जिस जिस योनि में भ्रमण करते हो उस योनि में आपके साथ रहते हैं, वो आपको छोड़ते नहीं। अब इसमें आता है एक शब्द कूटस्थ। कूटस्थ का अर्थ क्या होता है? कूटस्थ किसे कहते हैं? कूट किसे कहते हैं और स्थ, कूटस्थ शब्द जो है किस लिए इस्तेमाल हो रहा? गांव का कोई है? गांव का ओखली होती, ओखली अंडे से उसको कूटा जाता है, तो कूट शब्द जो है वहां से आया है, वो अपनी जगह स्थित है, वो कभी हिलती नहीं अपनी जगह से, फिक्स्ड है। इसी तरह यहां कहा जा रहा है कूटस्थ कि आत्मा और परमात्मा दोनों आपके हृदय में स्थित हैं, मूवमेंट नहीं है, बैठे बैठे थक गए हैं। थके हो प्रभु जी? घूमना चाहोगे थोड़ा सा? थोड़ा सा, एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद मन आता है चलो भाई, पढ़ते पढ़ते बच्चा थक जाता है, थोड़ा घूमने निकल जाता है, कुर्सी में बैठे पढ़ रहा था चलो बेड पे बैठ के पढ़ लेते हैं, बेड पे पढ़ रहा था चलो घूमते घूमते पढ़ लेते, ऐसे ही होता है ना प्रभु जी, जब पढ़ाई करते हैं, जब कोई काम करते हैं थक जाते हैं लगातार काम करते करते। आत्मा और परमात्मा हृदय में विराजमान है, वो कहते हैं बड़े दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे थक जाते हैं, चलो आज माथे में चले जाते हैं, आज कमर में चले जाते हैं, आज बाजुओं में चले जाते हैं, आज टांगों में चले जाते हैं, आज पेट में चले जाते हैं, स्थानु, वह हिलते नहीं अपनी जगह से, वहीं स्थित हैं, वहीं अपनी जगह पर है। किसी भी सिचुएशन से, किसी भी हालात से, किसी भी परिस्थिति से, जो प्रभुपाद जी ने शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभावित हुए बिना वो किसी से प्रभावित नहीं, नॉट अफेक्टेड, स्थित है अपनी जगह। कहाँ रहते हैं जी? हृदय। अभी मैं किसी से सुन रहा था, उनकी फिलॉसफी क्या है कि आत्मा जो है हमारी दोनों पांव के मध्य में या प्रकृति में विराजमान रहती है। तो आप जब आंखें बंद करके ध्यान लगाते हो तो आपका ध्यान जो है वो आत्मा पे जाके लगता है, क्योंकि आत्मा यहां पर विराजमान है। शास्त्र क्या कहता है, आत्मा कहां पर है? तो उन्होंने कहां पहुंचा दी? आंखों के बीच में पहुंचा। मतलब फिलोसफिकली शास्त्र को पढ़े बिना ज्ञान बांटा जा रहा है। यहां पे चर्चा आ रही है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि उपनिषद पढ़ लेंगे आप, भगवत गीता पढ़ लेंगे आप, भागवतम पढ़ लेंगे आप, चतन चरतामृत पढ़ लेंगे आप, तो आपको ज्ञान एक ही मिलेगा। एक ही ज्ञान है कि भगवान आपके हृदय में विराजमान है और वो स्थित है, वहीं पर स्थित है, वहां से मूवमेंट नहीं करते। आत्मा भी आपके हृदय में विराजमान है, वो भी वहीं स्थित है, वहां से मूव नहीं करती। चलो बहुत दिन हो गए यहां बैठे बैठे, आज घूम के आते हैं, शरीर थक जाता है तो घूमने जाते हैं, तो भगवान और आत्मा कभी थकते नहीं, उसी स्थिति में उसी जगह पर विराजमान है। इसके बाद प्रभुपाद जी यहां ब्रह्म संहिता से उल्लेख करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, कि भगवान के अनेक रूप हैं किंतु वे अद्वैत हैं, अपरिवर्तित हैं। भगवान में परिवर्तन नहीं आता। यहाँ अपरिवर्तित में कई बार लोग कहते हैं, देखो जी वहां नरसिंह भगवान का रूप ले लिया था, वहां वराह भगवान का रूप लिया था, परिवर्तन आया कि नहीं आया, चेंज आया कि नहीं आया? अब अवतस्य भगवान आ गए, वहां परशुराम आ गए, वहां बलराम जी आ गए, वहां राम जी आ गए, तो ये परिवर्तन आया कि नहीं आया? अब कैसे कहते हैं भगवान अपरिवर्तित है? तो लोग जो है ऐसी ऐसी बातें निकाल के गलत भ्रांतियां, गलत धारणाएं फैलाते हैं। यहां जो परिवर्तन है वो किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है कि भगवान में परिवर्तन नहीं होता? यहां चर्चा आ रही है कि वे अद्वैत है और अपरिवर्तित है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब जो है रूप नहीं है, परिवर्तन का मतलब है व्यय हो जाना, समाप्त हो जाना, फिनिश। ये भौतिक प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है, ये परिवर्तनीय है, परिवर्तन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, प्रलय आ जाता है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये शरीर आपका परिवर्तनशील है, समाप्त हो जाता है, इसको आप अग्नि को समर्पित कर देते हो, परिवर्तन आ गया इसमें, परिवर्तन आया, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपको चेंज दिखाई दे रहा है, परिवर्तनशील है। परंतु आत्मा जो हृदय में विराजमान है वो वैसी की वैसी है, चाहे बच्चे थे चाहे बड़े थे, परमात्मा जो विराजमान है वैसे ही है। ये नहीं है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भगवान में भी बदलाव आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा, तो वो अपरिवर्तनीय है। अब अद्वैत का अर्थ क्या है? अद्वैतम, अद्वैत का अर्थ क्या? लोग कहते हैं देखो जी यहां अद्वैत लिखा है इसलिए हम अद्वैतवाद फॉलो करते हैं। अद्वैतवाद क्या है? व्हाट इज अद्वैतवाद? अद्वैतवाद की बात कर रहा हूं यहां, इस अद्वैत की बात नहीं कर रहा। जो समाज के अंदर आज की तारीख में कल्ट है अद्वैतवाद, वो क्या है? अद्वैतवाद क्या है कि आपके शरीर में और आत्मा में भेद नहीं, सेम, आप जीव को शरीर से अलग नहीं मानते, आप भगवान को जीव से अलग नहीं मानते, आप कहते हो कि यस एक ही वस्तु है, एक ही, दूसरी नहीं। जब हम द्वैतवाद की बात करते हैं कि यहाँ भौतिक संसार के अंदर द्वैतवाद है और आध्यात्मिक संसार में अद्वैतवाद है, इसका क्या अर्थ है, इसका मीनिंग क्या है? कि भौतिक संसार के अंदर ड्यूअलिटी है, दो, अर्थात शरीर माया से बना हुआ, भौतिक प्रकृति से बना हुआ अलग है, और आत्मा भगवान का भिन्नांश होने के नाते अलग है, दोनों एक नहीं है, दोनों में भेद है, बोथ आर डिफरेंट। परंतु जो भगवान का धाम है वहां पर जीव को वही स्वरूप मिल जाता है जिस स्वरूप के अंदर भगवान उसके साथ आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मा ही मोर का रूप धारण करती है, वहां शरीर अलग नहीं, आत्मा ही तोते का रूप धारण करेगी और आत्मा ही भगवान का पार्षद बनकर वो रूप धारण करेगी, डिफरेंस नहीं है। तो यहां जो है बताया जा रहा है कि जीवों को भगवान का भिन्नांश कहा जाता है, जो कि सब जीवों के जीवन तथा आत्मा है भगवान, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। तो शक्ति कहाँ से आ रही है? जो हम कह रहे हैं भगवान सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद है भगवान का अंश होने के नाते है, तो इस अंश को भिन्नांश कहा जाता है, ये भगवान से विलग हुआ है, भगवान का स्व अंश नहीं है, भगवान अपने आप को उसी स्वरूप में प्रकट नहीं कर रहे हैं, इट इज ए डिफरेंट स्वरूप, अलग से है, भगवान का ये भिन्न अंश है और उनके हृदयों में अंतर्यामी के रूप में स्थित रहते हैं। भगवान आपके हृदय में विराजमान है, सब चीजें जानते हैं और गुणों में उनके समान होकर भी उनसे भिन्न होते हैं। आप भगवान के गुण जैसे हम कहा सच्चिदानंद, और हमारे गुण सच्चिदानंद गुणों में एक समान है, पर भिन्नता क्या है? भिन्नता है क्वांटिटी की। भगवान में गुण है अनंत मात्रा में और हमारे में गुण है सूक्ष्म मात्रा, बिल्कुल ही सूक्ष्म गुण है। और फिर क्या कह रहे हैं, यद्यपि विषयों तथा कार्यकलापों की अनेक किस्में हैं फिर भी भगवान एक है। भगवान ने अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं, उसका क्या अर्थ है? स्वरूप क्यों धारण किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, रीजन? भाई भगवान को वराह रूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी, मत्स्य रूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी, श्री कृष्ण के रूप में जाते ना सारे कार्य कर लेते, व्हाट वाज द नीड? इसका सिंपल सा एक लाइन का अर्थ है कि जैसी उस कार्य को करने के लिए आवश्यकता थी उस प्रकार का रूप धारण कर लिया गया। जो लीलाएं हो रही हैं उस लीलाएं में उस जगह पर जिस कार्य को करने के लिए जिस तरह के स्वरूप धारण करने की आवश्यकता थी वैसा भगवान का मूड हुआ और उन्होंने वो स्वरूप धारण करके कार्य किया एंड बैक टू अपने लोक, अपने लोक में वापस चले गए, अवतरित हुए, अवतार लिया और उसके बाद अपने लोक में वापस चले गए। ये डिपेंड करता है कि भगवान को उस वक्त लीला करने के लिए कौन सा स्वरूप चाहिए और जो स्वरूप चाहिए उसी के अनुसार उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया, वो लीला करी, वो कार्य किया और उसके बाद अपने धाम में वापस चले गए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।